भाव बंधन से मुक्त होने के लिए सांसारिक व्यक्तियों की संगति त्याग करके संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियां बताई गई हैं। भक्तों की संगति से शुद्ध कृष्ण भावना पर जागृत होती है। कृष्ण भावना पर आंदोलन सबों के लिए अवसर प्रदान करता है। जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे हम आश्रय देते हैं। हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं जिससे वे कृष्ण भावना प्रति का शांतिपूर्वक अनुशीलन करके इसी जीवन में परम भाव को प्राप्त हो सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के अंतर्गत महाराज रघुवर तथा जड़वर की वार्ता शीर्षक बारह का भक्ति
संभव है। हम जब प्रचार करने जाते हैं तो भी आपको भक्तों की संगत में आना पड़ता है, जब आप ग्रंथों के वेतन की सेवा करते हो तब भी आपको भक्तों की सेवा समझ में आना पड़ता है, और जब नौकरी करते हो धंधा करते हो व्यापार करते हो वहाँ भी भक्तों की संगत में आना पड़ता है। तो उत्तर क्या है? उत्तर ये है उतना ही स्वीकार करो जितना कि आवश्यक हो और उससे अधिक नहीं। ये नहीं कि मानो आप ग्रंथों के वेतन की सेवा कर रहे हो और आप किसी घर या दफ्तर जाओ और 3-4 घंटे लगा दो कपड़े मांगे भौतिक विषय की चर्चा की, उतना ही समय काटो जितना कि आवश्यक हो। ये है इसका तस्वीर। और भक्तों का प्रयास रहना चाहिए कि भक्तों की संगत में हम रहे, और ये भक्तों की संगत हम दो माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, एक है भक्त भगवत, दूसरा है ग्रंथ भगवत। जब आप ग्रंथों का अध्ययन करते हो तो वो भी एक प्रकार की साधु, एक प्रकार का साधु संगत। आप किसकी संगत प्राप्त कर रहे हो? व्यासदेव जी की, जो कि स्वयं भगवान के अवतार है। व्यासदेव के साथ प्रभुपाद और अनेक आचार्यों जिनके भावों को तात्पर्य में प्रस्तुत किया गया है, जब आप पढ़ते हो तो उनकी संगति प्राप्त करते हो। तो दोनों की आवश्यकता है, ग्रंथ भगवान और भक्त भगवान। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहाँ जाकर जब उन्होंने प्रचार करने को शुरू किया तो आस्ते आस्ते भक्त जुड़े और उनकी संगति से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति फैली सारे विश्व में। और ये अनुभव किया जाता है आज भी कि अगर भक्त किसी स्थान में जाते हैं प्रचार करने के लिए, अपनी संगत देते हैं, तो फिर लोग आकर्षित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी रशिया गए थे 5 दिनों के लिए। 5 दिन में उन्होंने एक भक्त बनाया और उस भक्त ने आगे प्रचार करके आगे हजारों को बनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के वातावरण में भी आप देख सकते हो कि जहाँ की साधु संगत का हम लाभ उठाए वहाँ भक्ति में के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए इस विषय पर बल दिया जाता है शास्त्र में। भागवतम के 34 स्कंद में नारद मुनि कहते हैं कि हम सब 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं, 3 लेवल। एक है उनके साथ जो भक्ति में आपसे ज्यादा आगे हैं एडवांस, दूसरा है आपके बराबर की संगत इक्वल फील, तीसरा है इसका आपसे कम आध्यात्मिक ज्ञान है और उनके प्रति क्या दया की भावना हो जाए। तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए अलग अलग स्थितियों में? जब आप सौभाग्य हो कि आप उनकी संगत में आओ जो भक्ति में आपसे आगे हैं, तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। और शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि जो बादल, जब मोर पीकॉक बादल को देखता है पहली बार तो फिर खुशी में नाचने लगता है, जब एक किसान बादल को देखता है खुश होता है, वर्षा आएगी अच्छी फसल होगी। तो इसी प्रकार शास्त्र में ये उदाहरण दिया जाता है बताने के कि अगर हमें एडवांस भक्तों की संगत मिले हमें क्या होना चाहिए? हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इस संगत द्वारा आपको ऐसा उपदेश मिलेगा जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर दूसरी संगत किस प्रकार की है? अपने बराबर की, इक्वल टू। जब आप अपने बराबर के भक्तों को मिलो तो क्या भाव होना चाहिए? क्या भाव बताएगा? मित्रता का भाव का क्या अर्थ है, मित्रता का भाव का अर्थ है कि हम एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक समाज में जब आप अपने बराबर के मित्र को भी मिलो तब ये प्रयास रहता है कि अपने बताओ आप उसे कितना अच्छे हो, आप उसे कितने ज्यादा सफल हो, आप कैसे उससे ज्यादा आगे हो। पर भक्तों की संग में जब हम बराबर के भक्तों को मिलते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। और एक दूसरे का उत्साह कैसे बढ़ाओगे, एक दूसरे के गुणों को देखो और अवगुणों के बजाय गुणों को देखो और एक साथ मिलकर सेवा करो। चैतन्य महाप्रभु जी ने जब प्रचार आंदोलन शुरू किया तब ने भक्तों को एक साथ भेजा था प्रचार, जैसे आप पीछे वो डायग्राम देखते हो यहाँ की चैतन्य महाप्रभु मधाई का उद्धार कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर की जोड़ी बनाई और उन्हें आदेश दिया क्या घर घर जाकर ये संदेश दो, बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जब ये प्रचार का कार्य आरंभ किया तो उन्होंने उन्होंने भक्तों को जोड़ा। जब चैतन्य महाप्रभु बगीचा का मंदिर साफ कर रहे थे तो सारे भक्तों को जोड़ा, सब मिलकर ये सेवा कर रहे थे। तो मित्रता का भाव है कि जब हम दूसरे भक्तों को मिलें जो हमारे बराबर के हैं तो हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। ये नहीं कि हम अड़चन डाले कि दूसरे व्यक्ति सेवा नहीं करता। और जब आप उनको मिलते हो जो भक्ति में आपसे पीछे हैं, कम ज्ञान के हैं, तो उनके प्रति क्या भाव रहता है, क्या भाव, दया का भाव, कंपैशन। और दया का भाव का अर्थ है कि आप प्रयास करते हो उन्हें दिव्य ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो हमारे शास्त्रों में कई स्थान हैं जहां की इस विषय पर बल दिया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और जब वो दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करने वाले थे तो सर्वो भट्टाचार्य जो कि उस समय पूज्य कोटि के मायावादी थे, महाप्रभु जी की संगत से इतने प्रभावित हुए कि वो भगवान के शब्द का सुन गए। तो महाप्रभु को सर्वो भट्टाचार्य ने कहा अगर आप दक्षिण भारत जा रहे हो तो वहां आपका परिचय होगा एक राजपाल के साथ जिनका नाम है रामनंदर रॉय। तो बिंदावी नदी के तट पर वहां स्थान का एक खूबसूरत केंद्र है, बिंदावी नदी के तट पर चैतन्य महाप्रभु रामनंदर रॉय से मिले और चैतन्य महाप्रभु ने रामनंदर रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। आप कहोगे ये कैसे संभव है, भगवान भक्त से प्रश्न पूछते हैं, अक्सर भक्त भगवान से पूछता है। तो भगवान भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं जैसे भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहता है। तो भगवान ने अनेक प्रश्न पूछे, जैसे आप देखते हो कि भीष्म देव से भगवान युधिष्ठिर महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे। जबकि भगवान जी वहां उपस्थित थे, भगवान ये बताना चाहते थे कि मेरे पास हर स्थिति में जो मेरे मन है उसको तेज रहता है। तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे किन से रामचंद्र रॉय से, जिनमें कि एक प्रश्न ये था कि इस विश्व में भक्त के लिए सबसे अधिक कष्ट किस कार्य द्वारा आ सकता है। और रामचंद्र रॉय ने बहुत सोचा और सोच कर कहा, भक्तों की संग से जुदा हो जाना ये भक्तों के लिए सबसे कठिन स्थिति है, सबसे ज्यादा दर्द की स्थिति है। दूसरे शब्दों में जब आप भक्तों से जुदा हो जाओ तो ये बड़ी कठिन स्थिति है, क्योंकि भक्तों की संग से जुदा होने का कारण से पोते वाले भी संगत में है। तो रामचंद्र रॉय ने कहा ये है सबसे कठिन स्थिति हर भक्त। तो दूसरे शब्दों में हमारे महात्माओं ने, हमारे संतों ने शास्त्रों में स्पष्ट उपदेश मिलता है किस प्रकार आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, किस प्रकार भक्ति आपकी नष्ट हो जाती है। तो जब आप भक्तों की संग में रहोगे तो क्या ज्ञान मिलेगा आपको? ज्ञान मिलेगा भक्ति का, क्योंकि भक्तों के मन में और कोई भाव नहीं रहता। भगवान के भक्तों में क्या लक्षण, जैसे कि आप शास्त्र में पढ़ते हो साधु समय साधु समय सर्वश्रद्धा, तो साधु किसे पैर कहते हैं? साधु की कुछ पहचान है या नहीं? क्या है साधु की पहचान? साधु की एक पहचान वो है कि उसका आचरण जो है शास्त्र पर आधारित। शास्त्र साधु की अगली पहचान यह है कि वो जुड़ा हुआ है भगवान की सेवा में, उसके मन में एक ही भाव है किस प्रकार कृष्ण भक्ति को निभाना। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्याग करो। और रूपा गोस्वामी जी कहते हैं किसी हालत में भी त्याग करो। तो साधु वो है जो कि शास्त्र पर आधारित उपदेश देता है और जिसका अपना आचरण शास्त्र पर आधारित हो। तो यहाँ जन भारत कह रहे हैं, अगर आप भक्तों की संगत में रहोगे तो आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। तो अनेक प्रकार के ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, अध्यात्मिक ज्ञान, और अध्यात्मिक ज्ञान के भी अनेक क्षेत्र हैं, पर सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? भक्ति योग का ज्ञान। जैसे कि भगवद गीता का निचोड़ क्या है? भक्ति माम अभिजन। श्रीमद् भागवत का निचोड़ क्या है? शुद्ध भक्ति। सवे पुंसा पर धर्मो यतो भक्ति अभ्योक्ष, शुद्ध भक्ति। तो शास्त्रों का निर्णय है शुद्ध भक्ति। तो जब आप संतों की संगत में रहोगे तो आपको वो ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान? शुद्ध भक्ति का, भक्ति के नियमों को कैसे आप उनका पालन कर सकते हो। और अगर आप इस ज्ञान का लाभ उठाओगे तो जो अज्ञानता का प्रभाव है, इल्यूजरी कॉन्सेप्ट, ये नष्ट हो जाएगा। जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं, देवी से बिना माया मामा माया तो कर गया। इस तरह के लिए माया का विरोध करना बड़ा कठिन है, पर अगर कोई मेरी शरणागत होता है, मेरी शरण में आता है तो इसका विरोध कर सकता है। आप सबका अनुभव होगा कि जब आप बड़े ध्यान से जाप करते हो, जब आप बड़े ध्यान से अच्छी साधना रखते हो तो आपका ध्यान गुस्सा ऊंचा रहता है, सच बात है। और जब आपकी साधना कमजोर हो जाए, जब माला कमजोर हो जाए, जब आप भक्त के संग में अधिक समय काटो तो भक्ति की रुचि कम हो जाती है। हमारे शास्त्रों में हमें स्पष्ट ज्ञान है किस रूप से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, किस रूप में भक्ति नष्ट हो सकती है। तो यहाँ जब भारत कह रहे हैं कि ज्ञान के दरबार से आप अज्ञानता को दूर कर सकते हो, जैसे कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा काम है से क्रोध से, और फिर आगे कहा भगवान ने ये जो कामा है जो आपका शत्रु है ध्यान जीवन का, इसके निवास का स्थान कहाँ है, मन में आगे, बुद्धि में आगे, इंद्रियों में। जैसे आपने पहचान लिया कोई चोर उग्रवादी आ गया है बॉम्बे में, तो अगला प्रश्न हो गए काम है ये उग्रवादी, तो काम है आपका शत्रु, कहाँ है, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान के तलवार से इसे क्या करो, काटो, दूर करो। तो जिस प्रकार अंधेरापन रोशनी से दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से ज्ञानता दूर होती है। इस विषय में चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्णा सूर्य समा आया अंधकार, यहाँ कृष्णता है जी महाराज का। जिस प्रकार जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधेरापन नहीं, उसी प्रकार जहाँ कृष्णा है वहाँ माया का प्रभाव नहीं है। दूसरे शब्दों में साधु की संगत में रहोगे तो आपको अति दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जब आप इस दिव्य ज्ञान का उपयोग करोगे तो फिर आप अज्ञानता से बच सकते हो। हमारा सौभाग्य यह है कि हमारे पास सारे हथियार हैं माया का विरोध करने के लिए। समस्या क्यों ये है कि हम इन हथियारों का उपयोग नहीं करते। तो यहाँ जब भारत कह रहे हैं भक्त की संगत में रहो, भक्त की संगत उतना ही रखो जितना कि आवश्यक हो, और साधु संगत में रहोगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और इस दिव्य ज्ञान के उपयोग से ज्ञान का जो है दूर हो सकती है। और आप भक्त के संग में रहकर भगवान की सेवा आरंभ करोगे, किस माध्यम के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। इस श्लोक में जब भारत कह रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि भक्तों की संग के द्वारा जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान के उपयोग से माया का प्रभाव आप दूर कर सकते हो। और इस ज्ञान का अर्थ है श्रवणम और कीर्तनम में रुचि लेना। हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है इस कार्य के ऊपर। अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे ध्यान से तो फिर आप माया का उपयोग कर सकते हो। हरि नाम का लाभ हर स्थिति में है, तो अगर आप हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान को भूल जाप करना चाहिए। एक समय एक विवेक कलाकार ने एक सिनेमा बनाया था हरे रामा हरे कृष्ण, और वो फिल्म काफी चल रही थी। तो फिल्म बनाई थी जिसका उनके भक्त भारत में आए थे, उसने पूछा जब इसमें उनके भक्त आए थे पहली बार बॉम्बे और भारत में तो काफी लोग आकर्षित हो गए थे देखकर। तो इस फिल्म कलाकार ने फिल्म बनाई जिसमें संदेश और कल था ये बताया था कि भंग लेते लोग और फिर हरे कृष्ण बोलते। पर अच्छी चीज ये थी फिल्म में ये हरे कृष्ण धूल हरे कृष्ण महामंत्र पूरी फिल्म में बज रहा था। तो हमने प्रभुपाद जी से कहा सहमित हुई कि प्रभुपाद जी ये फिल्म तो हमारा मान खराब कर देगी। प्रभुपाद ने कहा नो नथिंग टू बी लॉस्ट, हरे कृष्ण ये लोग हरे नाम सुनेंगे और कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो हरे नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, पर हम उस स्थिति पर नहीं है। हम हरे नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, हम हरे नाम का लाभ उठाना चाहते हैं। किस लिए? कि क्या प्राप्त करने के लिए? भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। और इसलिए शास्त्रों का निर्णय है, संतों का उपदेश है कि हमें ध्यान पूर्वक जाप करने का प्रयास करना चाहिए। और हम देखोगे जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतनी तेजी के साथ जो माया का प्रभाव है दूर होगा। और फिर जगभरत जी क्या कह रहे हैं, अब इस जीवन में ही कहाँ जा सकोगे? भगवान के धाम लौट सकोगे। दूसरे शब्दों में जब कोई भक्त भगवान की सेवा में जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते हो भौतिक जगत में, जैसे उदाहरण के लिए हरे कृष्णा में, वैसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए मंदिर जू में है या बॉम्बे में है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए मंदिर कहाँ है? वैकुंठ धाम है। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा यदि हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं या बॉम्बे दिल्ली का नहीं है, कहाँ है? वैकुंठ धाम। तो जहाँ भगवान का गुणगान हो, जहाँ भगवान की सेवा हो, वो स्थान क्या बन जाता है? वैकुंठ धाम हो जाता है। तो अगर कोई भक्त धन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़ा है तो उसके भौतिक शरीर जो है उसे भगवान के धाम में ले जाएगा। तो दूसरे शब्दों में असली आनंद सुख शांति अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो क्या है उपाय? भगवत सेवा ही एक उपाय है। तो जन भारत का उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम जब भक्तों की संगत में रहते हैं हम नुकसों को ज्यादा देते हैं, देखते हैं। एक समय मुझे याद है एक अफ्रीका से भक्त आ रहे थे जो प्रभुपाद जी से कह रहे थे मैं हरिदास ठाकुर जैसे एकांत में रहकर जाप करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बहुत काफी विनती की नहीं भक्तों के संग में रहो, मंदिर में रहो, एक स्थान में खुश नहीं तो दूसरे मंदिर चले जाओ। भक्त ने बड़ी जिद की नहीं नहीं मैं अकेले रहकर जाप करना चाहता। तो अंत में उनके लिए सुविधा बनाई थी मायापुर में यहाँ के कुटिया में, वो जाप कर रहे थे अकेले। थोड़े दिनों उन्होंने जाप किया उसके बाद किसी ने उन्हें देखा नहीं। तो हम सबका अनुभव है कि भगवान की संग में रहकर भक्ति का पालन सरल हो जाता है। और श्री पापा जी ने इतनी अच्छी संस्था बनाई है ध्यान के हमें पूरी सुविधा है इसके लिए भक्तों के संगत में रहने के लिए। तो चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी हैं उनमें उनके पास और सुविधा है, मंदिर में रह सकते हैं। तो जो घर में भी रहते हैं उनका भी प्रयास करना चाहिए कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर आए, हफ्ते में एक बार क्लास में आए और सत्संग में आए। और इस प्रकार भक्तों की संग में रहोगे तो आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा। चैतन्य चैतन्य को मैं पढ़ते हैं वो किस प्रकार नारद मुनि ने एक भयंकर शिकारी जिसका नाम था मृगारी का उद्धार किया। मृगारी को बड़ा आनंद आता था पशु को घायल करके, और फिर जब उनकी मृत्यु होती थी उनको वो बेचता था। और नादमुनी ने जब ये देखा कहा तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? मृगारी ने कहा यह तो मेरा खाना नहीं धंधा है। जब उसने नादमुनी द्वारा सुना क्या परिणाम होगा, उसने निर्णय कर लिया कि ये धंधा मुझे छोड़ना। और पूछा उसने अगर मैं ये धंधा छोड़ दूंगा तो मेरी रोटी कहाँ से आएगी?
जहाँ तो मुझे कहा कि हमें आऊँगा खबर फैल गई कि वो भयंकर शिकारी भगवान का ऊंचे कोटि का भक्त बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे और ये रिवाज है अब संत को जब मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, तो सब कोई जब कुछ ला रहे थे अपनी गाड़ी में नहीं था कि भगवान की कृपा से हर आवश्यकता प्राप्त हो गई थी। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं कि किस प्रकार सारे संत द्वारा अध्यात्म जीवन आरम्भ जाता है। तो जन भारत का जो उपदेश है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्तों के संग में रहकर कृष्ण भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये कृष्ण भक्ति का मौका हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। कृष्ण भक्ति है हर व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए। भगवान ने क्या कहा, हम बीजा पला चला। तो प्रभुपाद जी ने विदेशी भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा दी तो कई भारतीय ब्राह्मण कहने लगे, देखो भक्तिवृंद स्वामी ने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया, मृत्युओं को ब्राह्मण बना दिया। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप कुछ चमत्कार कर सकते हो? स्वामी जी ने कहा, नहीं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, पर एक चमत्कार जरूर किया है मैंने। क्या? हजारों मृत्युओं को मैंने ब्राह्मण बना दिया। तो कई लोग की सेवा में जुड़े थे बचपन से, आज उन्हें ऊंचे कोटि का ब्राह्मण बना गया। तो कई भारतीय ब्राह्मण लोग इस विषय की निंदा कर रहे थे, बाकी अंदर स्वामी ने विदेशियों को ब्राह्मण बना दिया। फिर प्रभुपाद जी शासन द्वारा ये स्थापित कर देते कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, जन्म पर आधारित नहीं। तो हमें साधु संघ को लाभ उठाना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और श्रवणम कीर्तनम का बड़े ध्यान से पालन करना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है इस श्रवणम कीर्तनम के प्रयास पर। और आप सबका अनुभव है कि जिस जिन दिनों में आप बड़े ध्यान से करते हो शरण कितना आपका उत्साह तेज रहता है और माया को सरलता से छिन भिन कर लेते हो। और जिन दिनों में आप शरण कितना नहीं करते ध्यान से उस दिन उत्साह कम रहता है, कई बार ये भाव आता है चलो आप क्या करें चलो। तो हमारा असली घर क्या है, भगवान का भाव। तो भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। और भक्तों का प्रयास करना चाहिए कि वो निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करें। जब श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था आरंभ की थी उन्होंने शुरू में भक्तों को 64 माला करने की जिम्मेदारी दी थी। 64 माला भक्तों ने प्रयास किया थोड़े दिनों के लिए, तो वो नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी को बता के कहने लगे, स्वामी यू कैन डू 64 चौथे माला बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने कहा ओके डू 32 माला करा। फिर उन्होंने 32 माला भी प्रयास की, वो भी नहीं कर पाए। तो वो प्रभुपाद जी को लौट कर कहने लगे, स्वामी कल जो राउंड वाइज करो। तो प्रभुपाद ने कहा 60 नो लेस। वैसे तो हम लोग की जिम्मेदारी है 16 माला करने के लिए, पर अगर आप ज्यादा कर सको तो कोई इतराज नहीं, तो 16 से कम नहीं करो। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर सदा भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे। और ये भाव रहेगा तो बिना शंका के आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। और क्या प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जो कि हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? और इस श्लोक में जब भारत में उपदेश रहे हैं कि किस प्रकार से आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
जल्दी
जो लोग
कैंटो 5 चैप्टर 12 श्लोक 16 जम्मू मुंबई।